چند لمحوں کے لیے خداوند کے حضور جھک جائیں گے. اور جیسے ہرنی پانی کے نالوں کے لیے ترستی ہے، ہم بھی اپنی روح کو خداوند کے سپرد کریں گے اور کہیں گے کہ خدا باپ، میری روح تیری پیاسی ہے، یسوع مسیح تیرے کلام کی پیاسی ہے، تیرا پاک روح جو زندگی کے پانی کی ندیاں ہیں اس کی پیاسی ہے. اور پاک روح کی رہنمائی میں میں چلنے والا بنوں، چلنے والی بنوں، کیونکہ کوئی اور آواز اس دنیا میں نہیں ہے جس کے پیچھے ہمیں چلنے کی ضرورت ہے. خداوند خدا یسوع مسیح اپنے کال، اپنے منہ سے یہ باتیں فرماتے ہیں کہ میری بھیڑیں میری آواز جانتی ہیں. سوائیں اس سے اس کو پکاریں، جیسے بنی اسرائیل قوم بیابان میں ہر روز آسمانی من کے مشتاق رہتے تھے، آج ہم بھی اس کی آسمانی روٹی کے مشتاق ہوں. ہاللویا. خداوند ہم سب کی رہنمائی کر، خداوند ہم سب کو خداوند خدا اپنا راہ دکھا. تو ہی آسمانی وہ روٹی ہے جو زمین پر اتری، اور جو کوئی تجھ پر ایمان لاتا ہے وہ ہمیشہ کی زندگی کا وارث ہے. لشکروں کے رب، آج کے کلام کے حصہ کو جو ہمارے سامنے ہیں سب کے لیے برکت کا باعث ٹھہرا. خداوند یسوع مسیح ناصری کے نام میں یہ دعا مانگتے ہیں، آمین. ہم نے کل دیکھا تھا اپنے آپ کے بارے میں کہ خداوند کا کلام ہمیں کون اور کیا کہتا ہے، کہ ہم کون ہیں؟ مقدسین، مقدس لوگ، علیحدہ کیے ہوئے، پاک لوگ، چنے ہوئے، جنہیں برگزیدہ بھی کہا گیا ہے، بے عیب بے گناہ خداوند کی نظر میں. لیکن سچ یہ ہے کہ ہم بہت دفعہ سچ کو بھول جاتے ہیں. جب تک ہم اس سچ کو یاد رکھتے ہیں، ابلیس کے وہ جلتے ہوئے تیر ہمارا کچھ بھی کر نہیں سکتے. اس لیے ہمیں ان سچائیوں کو اپنی زندگی میں ایسے جڑ لینے کی ضرورت ہے جیسے پرانے عہد نامہ میں یہ حکم دیا گیا تھا کہ تم اپنی پیشانی پر میرے حکموں پر باندھنا. پرانے عہد نامہ میں خداوند خدا نے موسیٰ نبی کے وسیلہ سے بنی اسرائیل قوم کو یہ حکم دیا تھا، اپنی پیشانی یعنی کہ اپنے ماتھے کے اوپر میرے کلام کو باندھنا. اور جتنے بھی کاہن اور جتنے بھی خدا کے ماننے والے تھے پرانے عہد نامہ میں، خاص کر لاوی کے گھرانے میں سے جو کہانت کا کام کرتے تھے، ایک ڈبہ ہوتا تھا چار نکروں والا، اس میں وہ خدا کے کلام کی ان آیاتوں کو پاتے تھے جو اس روز کے لیے ہوتی تھی، ان کو لکھ کر وہ اپنے ماتھے پر چمڑے کے ڈورے سے اسے باندھ کر اپنے ماتھے پر لگاتے تھے. اور وہ اس بات کو یاد رکھتے تھے کہ یہ باندھنے کا مقصد یہی ہے کہ میں اپنے پورے دن میں خدا کے کلام کو یاد رکھوں. اور پھر وہ اپنے بازوؤں پر یعنی کہ ڈولوں پر بھی اس ڈبے کو باندھتے تھے. اس ڈبے میں خدا کا کلام، موسیٰ کی شریعت، اس کے احکامات، جو بھی حصہ وہ چنتے تھے پایا جاتا تھا، اور اپنے ڈولوں پر باندھتے تھے. اور باندھ کر وہ یاد رکھتے تھے کہ میرے ہاتھ ناراستی کے لیے نہ بڑھیں گے. اور پھر دوسرے قسم کے وہ تعویز بھی بناتے تھے، آج کے تعویز نہیں، بابے والے، اور دوسرے تعویز. بابیوں والے بھی تعویز ہیں، اور پھر خدا کے خادم جو گمراہی کے طالب ہیں، جو گمراہ ہو چکے ہیں، بہت دفعہ پادری بھی تعویز دیتے ہیں. حیران ہونے کی ضرورت نہیں ہے، پادری صاحب بھی تعویز بنا کر دیتے ہیں. اس لیے ہمیں خدا کے کلام کو مد نظر رکھنے کی ضرورت ہے. سو ہمیں اپنی حیثیت کو، اپنے مقام کو، اپنے درجہ کو جاننے کی ضرورت ہے کہ ہم کون ہیں. یہ بات کیوں میں نے کہی؟ کیونکہ خدا کے کلام میں یہ لکھا ہوا ہے کہ خداوند کے بندہ موسیٰ نے یہ باتیں ان سے کہی تھی کہ تم اپنی اولاد کو یہ حکم دینا تاکہ وہ یہ باتیں کرتے رہیں. سو پرانے عہد نامہ میں یہ ان کا طریقہ کار تھا کہ خدا کے کلام کو یاد رکھیں. अपने माथे पर, अपने डौलों पर वो खुदा का कलाम बांधते थे, ताकि वो याद रखें, ताकि वो उनके हाथ बुराई और झूठ के लिए ना चलें। आज हमें भी कहा गया है कि हम किस तरह खुदा के कलाम को याद रखें, अपनी रूह में उतारने से। रूह में उतारने से, जिस तरह जब जबूर 119 के लिखने वाले को देखते हैं तो वो कैद खाना में नहीं, वो गुलामी में है, जंजीरों से जकड़ा हुआ है। हर सुबह जब उन कैदियों को बाहर निकाला जाता है काम के लिए, मुशक्कत के लिए उनको लेकर जाया जाता है, तो वो उन दिनों को याद करता है, वो उन लम्हों को याद करता है जो उसने यरूशलम में गुजारे, जो उसने हैकल में गुजारे और सीखे और सुने। वो उन हवालों को याद करता है कि खुदा ने कैसे कैसे काम, अजीब अजीब काम किए हैं। जबूर 119 बाइबल मुकद्दस का सबसे बड़ा जबूर, और इसे कहा जाता है बाइबल मुकद्दस में सबसे लंबी दुआ। ये खुदा के बंदा लिखने वाले की क्या है? सबसे लंबी दुआ है। सो उस दुआ में वो क्या करता है? उसके पास बाइबल नहीं है, उसके पास उस वक्त कुछ भी नहीं सवाए जंजीरों के और उस मोहब्बत के जो उसके दिल में है। इसलिए हमें ईमानदार होते हुए दाऊद नबी के साथ, अय्यूब नबी के साथ, यीशु मसीह के साथ, पालूस रसूल के साथ इन सच्चाइयों को याद रखने की ज़रूरत है। पालूस रसूल के पास भी जब वो कैदखाना में था, जंजीरें थी और दो रोमी सिपाही थे जो हर वक्त उसके साथ हथकड़ी लगाए रहते थे, हर वक्त उसके साथ रहते थे। सो हमारे पास क्या है? बाइबल मुकद्दस, वो सहूलत, वो खुदा का कलाम जो मूसा नबी के पास नहीं था, दाऊद नबी के पास नहीं था, यर्मिया नबी के पास नहीं था, पालूस के पास भी नहीं था। बाइबल मुकद्दस मुकम्मल हुई गालबन जाके 96 और 100 ईस्वी के दौरान। तो हम लोग जो हैं, हमारे पास पूरा खुदा का मकाशफा है, वो सच्चाइयाँ जो कलीसिया की रहनमाई और तरबियत के लिए होनी चाहिए। सो आए हम देखें कि मुकद्दसों को क्या मुनासिब है, ईमानदारों को क्या मुनासिब है कि वो किस तरह ज़िंदगी गुजारें। ये ज़िंदगी जो हम गुजारेंगे, इसका अजर एक एक व्रति, एक एक छोटे छोटे ईमाल का मिलेगा। क्योंकि निजात के बारे में पालूस रसूल कहता है कि अपने जहनों से निकाल दो, निजात किस तरह है? ईमान से है। निजात किस तरह है? ईमान से। ईमान के सिवा कोई और रास्ता है ही नहीं, और कोई रास्ता है ही नहीं। क्योंकि पालूस रसूल इस बात पर अड़ा हुआ था, पालूस रसूल इस बात पर क्या हुआ, फंसा हुआ था कि पुरानी अहदनामा की उस तमाम शरीयत की बातों को अमल में लाने से निजात है, लेकिन उसने इस सच को जान लिया कि नहीं। निजात किस से है? मिसाल के तौर पर आपको एक हिस्सा चाहता हूं कि आप सब पढ़ें। गलतियों दो बाप यहां पर हम देखते हैं उसकी 16वीं आयत में पालूस रसूल कहता है, तो भी ये जान कर के आदमी शरीयत के अमाल से नहीं बल्कि सिर्फ यीशु मसीह पर ईमान लाने से रासबाज ठहरता है। शरीयत के अमाल से कोई भी रासबाज नहीं ठहर सकता, क्योंकि आगे जाके वो कहता है, खुद भी मसीह यीशु पर ईमान लाए, अपने बारे में कहता है, ताकि हम मसीह पर ईमान लाने से क्या ठहरें? रासबाज, ना कि शरीयत के इमाल से, क्योंकि शरीयत के इमाल से कोई बशर रासबाज ना ठहरेगा। क्यों नहीं ठहरेगा? 10 अहकाम, यहूदियों ने 10 अहकाम को पूरा करते करते कितने हुक्म बना ले? 610। 10 अहकाम को पूरा करते करते कितनों में बदल दिया? 610 हुक्मों में, और वो नाकाम हुए, और वो नाकाम हुए। इसलिए कहता है कि कोई भी बशर शरीयत पर अमल करने से रासबाज नहीं ठहर सकता। और वाहद एक ही है जिसने शरीयत को मुकम्मल किया, और वो कौन है? खुदावंद यसूअल मसीह। और क्या लिखा है? और हम जो मसीह में रासबाज ठहरना चाहते हैं, अगर कोई रासबाज बनना चाहता है, जमात में कोई मौजूद है, तो उसे वो कहता है जैसे आज, अगर हम में से कोई भी मसीह में रासबाज ठहरना चाहता है, अगर खुद ही गुनाहगार निकले तो क्या मसीह गुनाह का बायस है? हरगिज नहीं। क्या लिखा है? अगर कोई खुद ही गुनाहगार निकले तो मसीह गुनाह का बायस है? हरगिज नहीं। सो कहने का पालूस का मतलब यही है कि कोई फर्द बशर शरीयत के मुताबिक शरीयत पर अमल करने से रासबाज नहीं ठहरता। किस तरह हम रासबाज ठहरते हैं? ईमान से। इब्राहिम ईमान लाया, उसके लिए क्या गिनी गई? रासबाजी। यसाया नबी ईमान लाया, उसके लिए क्या गिनी गई? रासबाजी। यर्मिया नबी ईमान इस कॉल पर लाया कि मैंने तुझे चुन लिया, तो उसको क्या ठहराया गया? रासबाज नबी ठहराया गया। इसलिए हमें अपनी हालत को, अपने मकाम को याद रखने की ज़रूरत है। सो अब हम इस बात पर गौर करेंगे कि मुकद्दसों को क्या मुनासब है, आप पाक लोगों को क्या मुनासब है, मुझे क्या मुनासब है कि हमने हर रोज़ किस तरह ज़िंदगी गुजारनी है। पालूस रसूल इसके बारे में कहता है कि मैंने अपनी ज़िंदगी किस तरह गुजारी है? आदमियों को खुश करने में नहीं। कहता कि अगर मैं आदमियों को खुश करता तो मैं खुदा को कभी भी खुश ना कर पाता। इसका हरगिज़ मतलब नहीं कि आप आदमियों से लड़ाई झगड़ा और फसाद हर वक्त रखें, नहीं। उसका कहने का मतलब है कि कुछ गलतियों की कलीसिया में ऐसे लोग आए जो यसु मसीह का इनकार करते थे, लेकिन कहते थे कि हम यसु मसीह के मानने वाले हैं। तो उसने एक लकीर खींची, लकीर यानी कि ये हद है, तुम यसु मसीह को निजात दहिंदा नहीं मानते, लेकिन फिर भी फरेब देने के लिए उसका नाम इस्तेमाल करते हो, इसलिए मैं तुमको खुश नहीं करूँगा बल्कि कड़वा कलाम करूँगा। उन लोगों को पालूस ने क्या कहा? कुत्ते। क्या कहा गया? कुत्ते। कुत्तों का जब भी लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है बाइबल मुकद्दस में, इसके पीछे दो नज़रियात हैं। कुत्ता या तो बहुत वफादार है, जिसमें मुस्बत तौर पर किसी के लिए इस्तेमाल किया गया है कि जो पूरी वफादारी से अपने मालक के साथ चलता हो, और फिर गैर कुआम के दौरान लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता था कुत्ते, यानी कि बिद्दती लोगों के लिए जो मसीह का इनकार करते थे, मसीह के नाम को छोड़कर गलतियों में, इफ़सस में और फिर दूसरे तमाम इलाकों में क्या करते थे? अपने आप को बढ़ोती देते थे। बाइबल मुकद्दस उनको क्या कहती है? कुत्ते। कि उन कुत्तों से खबरदार रहो। और फिर कहा गया है यहाँ तक कुत्तों से और यहाँ कटवाने वालों से, यानी कि जो खतने से कहते थे जी खतना करवाओगे तो तुम्हें निजात मिलेगी। ये पुराने हैदनामे की एक रस्म थी जिसे यहूदी मानते थे कि जब तुम्हारा बेटा पैदा हो तो आठवें दिन उसका खतना करना। इस रस्म को, इस हुक्म को उन्होंने क्या बना लिया? निजात की बुनियाद बना लिया। 10 अहकाम खुदा ने इसलिए दिए थे कि इंसान मेरी ज़रूरत को महसूस करे। अगर आज मैं आपको एक हुक्म दे दूं कि जी जाएं, आज आपने झूठ नहीं बोलना, तो क्या होगा? हम झूठ बोलेंगे। दो किस्म के झूठ है, जानते हुए और अनजाने में। जानते हुए हम सोच समझ कर मनसूबा करते हैं, लेकिन अनजाने में क्या, कोई दरवाजे पर आता है, टक 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 टक, जी चाचा जी घर हैं? नहीं जी, नहीं है। और चाचा जी अंदर क्या कर रहे हैं? चाय पी रहे हैं। लेकिन बेटे ने या बीवी ने या बच्चे ने क्या कह दिया? नहीं जी, वो घर नहीं है। तो क्या हुआ? अनजाने में झूठ बोला गया। सो 10 हुक्मों को देने का खुदा का मकसद क्या था? कि बनी नू इंसान जो के संग दिल और उनका दिमाग फिर गया है, क्या करें? मेरी तरफ रजू करें। 10 हुक्मों पर कोई भी अमल पूरा ना कर पाया सवाई यीशु मसीह के। सो इसीलिए खुदा ने हुक्म दिए ताकि वो मेरी जरूरत को महसूस करें। सो हम ईमानदारों को क्या मुनासिब है कि किस तरह जिंदगी गुजारनी है, किस तरह जिंदगी गुजारनी है? अगर कोई धोखेबाज जैसे उस दौर में पालूस रसूल उनको कहता है कुत्ते बिद्दती, उनसे बचने की जरूरत है, वैसे ही आज हमें भी अबलीस के फ्रेब से बचने की जरूरत है और किस तरह जिंदगी गुजारनी है। इफ़सियों मेरे साथ देखें 5वां बाप उसकी पहली आय से, पस अजीज फर्जंदों की तरह खुदा की मानत बनो। कोई भी इस सच को बदल नहीं सकता, अगर आप यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं, नए सिरे से पैदा हुए हैं, कोई भी, यहां तक कहूंगा दलेरी से, मूसा पालूस रसूल आसमान का कोई फरिश्ता खुदा खुद भी इस सच को बदल नहीं सकता, क्योंकि खुदा सच्चा है और वो अपना वादा जो करता है उसका इनकार नहीं करता। सो खबरदार, अगर आपके सामने कोई भी आकर खड़ा हो जाए और कहे कि जी आप यीशु पर ईमान रखते हैं, जी, ओ आपने 3 इतवार मिस किए हैं, आप दोजक में जाएंगे, वो झूठा है। चाहे कोई भी हो, चाहे वो मैं ही हूं, यहां पर लिखा है कि बस अजीज फर्जंदों की तरह खुदा की मानत बनो। और क्या लिखा है? और मसीह और मोहब्बत से चलो, जैसे मसीह ने तुमसे मोहब्बत की और हमारे वास्ते अपने आप को खुशबू की मानद नजर करके कुर्बान किया। और जैसा मुकस्सों को मुनासिब है, तुम में हरामकारी और किसी तरह की नापाकी या लालच का जिक्र तक ना हो। ये पहली 3 बातें हैं, ईमानदारों में हरामकारी नहीं होनी चाहिए, ईमानदारों में किसी तरह की नापाकी नहीं होनी चाहिए, किसी किस्म का लालच नहीं होना चाहिए, बरअक्स इसके क्या होना चाहिए? मेरे साथ एक हवाला देखें, हमारे पास वक्त कम है। नए अहदनामा में से पत्रस का दूसरा आम खत, उसका पहला बाप, उसकी 5वीं आय से, यहां पर हमें क्या कहा गया है? जाते अलाही के शरीक कहा गया है कि हम जाते अलाही में शरीक हैं। क्यों? क्योंकि वो हम में रहता है। और 5वीं आयत में लिखा है, पस इसी बाय से, ठीक है ना जी, पस इसी बाय से तुम अपनी तरफ से कमाल कोशिश करके अपने ईमान पर नेकी, हमें कोशिश करने की जरूरत है। जैसे रोटी पकाते हैं, रोटी खुद ब खुद हमारे मुंह में नहीं जाती, ईमान हमें लाना है। निजात कौन देता है? यीशु मसीह। कोशिश हमें करनी है तो फिर क्या होगा? नतीजा निकलेगा। मकसों को क्या मुनासिब है? कुछ करने की। और ये काम निजात के लिए नहीं बल्कि यीशु मसीह की गवाही के लिए है, एक दूसरे पर मसीह को जाहिर करने के लिए है। 6वीं आयत में क्या लिखा है? 5वीं आयत में, पस इसी बायस तुम अपनी तरफ से कमाल कोशिश करके अपने ईमान पर नेकी, और नेकी पर मार्फत, और मार्फत पर परहेजगारी, और परहेजगारी पर सबर, और सबर पर दयानतदारी, और दयानतदारी पर बरादराना उल्फत, और बरादराना उल्फत पर मोहब्बत बढ़ाओ। क्योंकि अगर ये बातें तुम में मौजूद हों और ज़्यादा भी हो जाएं तो तुमको हमारे खुदावंद यीशु मसीह की पहचान में बेकार और बेफल ना होने देंगी। मोहब्बत, सबर, परहेजगारी, दयानतदारी, वफादारी, उल्फत, बरादराना मसीही मोहब्बत, अगर ये है और बढ़ भी जाए तो इससे हम बेबल बेफल नहीं रहेंगे। और सादा लफ्जों में, अगर तुम मुझ में कायम रहो, यीशु मसीह ने कहा, तो मैं तुम में कायम रहूँगा, तो तुम बहुत सा फल लाओगे। सो मुकस्सों को ये मुनासब है कि नेकी करें, नेकी के साथ परहेजगारी, परहेज के साथ सब्र, सब्र के साथ दयानतदारी, ईमानदारी की ज़िंदगी गुजारें, जिसमें लालच ना हो, जिसमें चोरी चकारी ना हो। और क्या लिखा है? बरादराना उल्फत, यानी कि भाईचारे वाली मोहब्बत। और भाईचारे के साथ क्या है? मोहब्बत बढ़ जाए तो इससे हम बेकार ज़िंदगी बसर नहीं करेंगे, हमारी ज़िंदगी में क्या लगेगा? फल लगेगा। आज हमने ये आठ बातें देखी हैं, ये आठ बातें हैं, ये आठ वो करदार हैं जो मसीही ज़िंदगी में मुकस्सों को मुनासब हैं। सो आए हम दुआ करें कि खुदावंद हमें कुव्वत और ताकत दे कि हम आज के दिन में ईमान से नेकी